ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
हमको घाटा होता है तब फिर हमारे दुश्मन को समझ में आता है कि ईश्वर जो करता है सही करता है ना, यही है ना। और हम क्या कहेंगे, ये ईश्वर का ये क्या किया है ईश्वर, ये भी कोई करने का ढंग है क्यों जी? और हमारा दुश्मन क्या कहता है, ईश्वर जो करता है सही करता है। तो मंत्री ने कहा कि ईश्वर जो करता है सही करता है। राजा को गुस्सा आया और उस मंत्री को जेल में बंद कर दिया। इसका दिमाग खराब हो गया है, बंद कर दिया जेल में, मंत्री पद से सस्पेंड कर दिया, बंद कर दिया। बोल, तेरे को मंत्री पद से भी हटा दिया और जेल में बंद कर दिया, अब वर्षों जेल में सड़ना पड़ेगा, अब बोल ईश्वर क्या कर रहा है। तो मंत्री का कहना था ईश्वर जो करता है सही करता है। उस अवस्था में भी मंत्री ने क्या कहा, ईश्वर जो करता है सही करता है। राजा ने सोचा कि इसका दिमाग ठीक से खराब हो गया है, पहले मेरी उंगली कटी तो कहता था ईश्वर जो करता है, अब खुद जेल में बंद हो गया, मंत्री पद से सस्पेंड हो गया, फिर भी बोलता है ईश्वर जो करता है सही करता है, इसका दिमाग ठीक से खराब हुआ है। तो बंद ही रखो जेल में। मंत्री तो वहीं माला लिया और ओम नमः शिवाय करना शुरू कर दिया, ईश्वर जो करता है सही करता है ना। जब मंत्री पद में था, बहाल वाला ड्यूटी में था, तो माला लेकर बैठकर जप नहीं कर पाता था, किसी भी समय राजा बुला सकता था, तो अब तो राजा बुलाएगा नहीं ना उसको, पुरुषोत्तम मास में खूब जप करेगा वो, ईश्वर जो करता है सही करता है। अब राजा ने दूसरे मंत्री को नियुक्त किया, वर्षों उसको जेल में बंद कर दिया। एक वर्ष के बाद जब वो राजा उस नया मंत्री को, नवनियुक्त मंत्री को लेकर जंगल गया शिकार खेलने, तो वहीं शिविर लगाकर बैठकर शिकार खेल रहा था, एक दिन भटक गया जंगल में, राजा भटक गया। कई बार सुनी है आप लोगों ने कहानी, उसी जंगल में एक तांत्रिक भैरव साधना कर रहा था, कपालिक। तो उस तंत्र साधना के अंतिम में नरबलि देना है, अपने चेलों को कहा कि जाओ बढ़िया नर खोज के लाओ, भगवान को हमारे देवता को बलि चढ़ाना है, उसके बाद हम जो चाहें वो ठीक हो जाएगा, मंत्र सिद्ध हो जाएगा, जाओ। सेवक लोग गए तो राजा जंगल में भटका हुआ था, उसी को पकड़ लिया, ले आए महाराज, चलो तैयार करके भैरव के आगे सिर गर्दन झुकाकर रखो, हम तलवार लेकर आते हैं। तांत्रिक अंदर गया, मंत्र पढ़ता हुआ तलवार, नंगे तलवार लेकर आया और राजा भैरव के आगे गर्दन तान कर बैठा हुआ है, क्योंकि उसको बलि चढ़ाना है, प्रतिकार कर नहीं सकता है वो किसी से, राजा एकला है, अकेला है, और उसके तांत्रिक के चेले हट्टे कट्टे पांच सात हैं, क्या प्रतिकार करेगा वो। जब राजा आया तो उसको गर्दन में तलवार प्रहार करने से पहले उसके अंगब आदि प्रत्यंग को देखना शुरू किया, बलि खंडित तो नहीं है कोई अंग प्रत्यंग यदि विकल हो, खंडित हो, तो ऐसा व्यक्ति बलि नहीं चढ़ता। तो कान ठीक थे, नाक ठीक थे, सब कुछ ठीक था, ऊपर तो हाथ देखने लगा तो उंगली कटी हुई थी। उसने कहा कि ये हमारे देवता को, भैरव को बलि नहीं चढ़ेगा, क्योंकि पहले से कटी हुई है। कहां से ले आए, ले जाओ इसको, ले जाके छोड़ दो, दूसरा खोज के लाओ। अच्छा महाराज, हमको क्या पता, छोड़ दिया तो उसकी जान बची। एक वर्ष पहले परमात्मा ने, ईश्वर ने उसकी उंगली कटवा कर एक वर्ष के बाद गर्दन बचाई। ये कौन समझेगा बोलो? उस राजा को समझ में आया था पहले उंगली कटी थी तब। ईश्वर ने ये जो उंगली काटी है, मेरे गर्दन को बचाने के लिए उंगली काटी है। ये किसी को समझ में आता है? हैं? जब उंगली कटती है तो तब समझ में आएगा किसी को? एक वर्ष बाद अब राजा को समझ में आया कि मंत्री जो कह रहा था ठीक है, वाह ईश्वर क्या बढ़िया, उंगली कटाकर गर्दन बचाया। ईश्वर तू जो करता है ठीक करता है। अपने बारे में तो समझ में आ गया राजा को। अब आकर मंत्री को पूछा, हे मेरे बारे में तो ईश्वर ने जो किया है वो ठीक किया, आज की घटना ये है भाई, एक वर्ष पहले उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरा गर्दन कट जाता, भगवान ने उंगली कटवाकर गर्दन बचाया, इसलिए भगवान को धन्यवाद दे रहा हूं मैं। मेरे बारे में तो ये समझ में आया भाई, अब तुझे जो जेल में बंद किया था, नौकरी से हटा दिया था, उस समय तूने कहा था कि ईश्वर जो करता है ठीक करता है, अब एक वर्ष से तू जेल में बंद पड़ा है, बोल तेरे बारे में ईश्वर ने क्या अच्छा किया, तेरे बारे में ईश्वर ने क्या अच्छा किया मुझे बताओ। बोले महाराज, ईश्वर बहुत ही दयालु है, एक वर्ष पहले तुमने मुझे सस्पेंड करके जेल में बंद न किया होता, मैं तुम्हारे पीछे पीछे जंगल में जाता तुम्हें खोजते हुए, और तुम तो उंगली कटे हुए होने के कारण बच जाते हैं। गर्दन किसकी कटती? मेरा तो उंगली कटा नहीं था। हैं? वो तांत्रिक के चेले किसको पकड़ते फिर? विकल्प में मुझे पकड़ते, और क्योंकि मेरा कोई अंग भंग हुआ नहीं था तो गर्दन किसकी कटती? मेरी कटती। ईश्वर ने एक वर्ष पहले से ही मेरी गर्दन बचाने की तैयारी की है। उसने जेल में बंद ना किया होता तो आज तुम्हारी जगह मेरे गर्दन कट जाते। उंगली काटकर तुम्हारे गर्दन बचाया, जेल में बंद करके, नौकरी से हटाकर मेरे गर्दन बचाया। ईश्वर कभी गलत नहीं करता, ये भाव क्या है? परितोष, ये संतोष का भाव है, परितोष का भाव है। परमात्मा का भक्त, भगवान का भक्त कभी भी उसके लवों में परमात्मा के प्रति, किसी की प्रति भी शिकायत नहीं रहती। समझे कि नहीं? भगवान के भक्तों में, परमात्मा के भक्तों में किसी के भी प्रति, परमात्मा की तो बात छोड़ दो, किसी के भी प्रति शिकायत नहीं रहती। इसलिए शायद किसी कवि ने कहा ना, मुझे वो कविता याद आ गई, आ गई थी शिकायत लबों पे, आ गई थी शिकायत लबों पे, लब माने वोट, शिकायत करने के लिए शिकायत अंदर से वोट तक तो आ गई थी,
लेकिन करते किससे? वो शिकायत करेंगे तो करें किससे, बोलो हैं? तुम जो शिकायत करो, तुम्हारी शिकायत को सुनकर समाधान करने वाला कौन है, हैं? कौन समाधान कर देगा? क्योंकि जिसको तुम शिकायत सुना रहे हो उसी के ओठों में हजार शिकायत भरे पड़े हैं, वही हजार शिकायतों के गठड़ी ढो के चल रहा है। बोलो, कोई छाती में हाथ रख के कहता है, कह सकता है, संसार में किसी के प्रति मेरी कोई शिकायत नहीं है, कह सकता है? हैं? जब ड्राइवर समय में नहीं आता है तो क्या करते हो, हैं? कहते क्या हो, तो क्यों नहीं आए समय में? तनख्वाह पूरी ले लेता है और काम करने में क्या कहोगे, बोलो? और तुम ड्राइवर की शिकायत करोगे, ड्राइवर तुम्हारी शिकायत करता है, नहीं करता है, हैं? वो भी शिकायत करता है, गधे की तरह काम लगाता है रात दिन, हैं? वो भी अपनी शिकायत करता है। सबके सब ऐसे ही है भाई, बहू सास की शिकायत, सास बहू की शिकायत, बेटा बाप की शिकायत, बाप बेटे की शिकायत, अड़ोसी पड़ोसी का शिकायत, पड़ोसी अड़ोसी का शिकायत, हैं? जनता नेताओं की शिकायत, नेताएं जनता पब्लिक की शिकायत, ले जी आ गई थी शिकायत, करते किसे? विचार किया उसने, जो स्वयं हजारों शिकायत कर लेकर घूम रहा है उसके सामने शिकायत करना बेकार है कि नहीं, बोलो, हैं? इसलिए करना ही बेकार था। फिर क्या किया तुमने महाराज? तो वो कभी बोलता है, तो शिकायत करना छोड़कर हमने क्या की, दर्द पीकर चल पड़े तो चलते रहे, दर्द पीकर चल पड़े तो चलते रहे, हार कर बैठ जाते तो बैठना बेकार था, है? अरे शिकायत करके हार करके बैठना तो बैठना ही बेकार है ना, बैठकर क्या उपलब्धि होगी, बोलो? अरे चलोगे तो कुछ न कुछ उपलब्धि होगी, नहीं तो बैठकर क्या उपलब्धि होगी? घुटने में दर्द है तो घुटना है तो दर्द होगा ना घुटने में दर्द है, अब घुटने में दर्द है करके घर में बैठे रहोगे तो उपलब्धि क्या होगी, बोलो? उपलब्धि क्या होगी, बेनिफिट क्या होगा? दर्द है तो है, तो मलते हुए लकड़ी हाथ में लेकर आइया करते हुए प्रेमपुरी आओगे, कुछ तो सुनने को मिलेगा, उपलब्धि हुई कि नहीं, बोलो? दर्द पीकर चल पड़े तो चलते रहे, लेकिन हार कर बैठ जाते तो बैठना बेकार था। इसीलिए जिंदगी हार कर बैठने के लिए भी नहीं है, वाणी शिकायत करने के लिए नहीं है, भक्तों की वाणी शिकायत करने के लिए नहीं है, और भक्तों की जिंदगी ध्यान दो, भक्तों की जिंदगी हार कर बैठने के लिए नहीं, हर परिस्थिति में पुरुषार्थ करने की है, उद्यम करने की है, साधना करने की है, और भक्तों की वाणी शिकायत करने की नहीं है, पी जाना है परिस्थिति को, पी जाना है। पीने का अर्थ होता है कंप्रोमाइज करो, स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। अरे उम्र भी हो गया, घुटना भी, कब तक, कितना ये शरीर, इतने बड़े शरीर को ये घुटना कब तक ढोता ढोता फिरेगा? क्या 40 साल की उम्र में तुमने शिकायत की थी घुटना दुख रहा है? हैं? कितने काम किया था बोलो। अब भाई अब तक इस शरीर को ढोते ढोते इस घुटने को 70 साल हो गया, कब तक ढोएगा भाई? तुम वजन बढ़ाते जा रहे हो और कह जा रहे हो घुटने को कि दर्द होता जा रहा है, घुटना दर्द होता जा रहा है तो वजन घटाते जाओ। वजन घटाते नहीं हो और शिकायत करते हो कि घुटना दुख रहा है, घुटना दुख रहा है। कब तक ढोए वो घुटना बेचारा? है तो जिंदगी हारने के लिए नहीं, वाणी शिकायत करने के लिए नहीं। इसीलिए भगवान के भक्ति रूपी बादल कादंबनी कहां रहती है? महेश पद पुष्करम आवसंती, परमात्मा के चरण रूपी आकाश में भक्ति रूपी बादल विचरण करती है। आकाश को छोड़कर बादल अन्यत्र नहीं विचरण करते, भक्ति परमात्मा के चरण को छोड़कर अन्यत्र आश्रय नहीं ले सकती है। जैसे आकाश की बादल वृष्टि करते हैं यानी पानी बरसते हैं, और भगवान के चरण की भक्ति रूपी बादल क्या बरसती हैं? परितोष वर्षति, संतोष की वृष्टि करते हैं। भक्तिर्महेश पद पुष्करमा वसंती कादंबनीव कुरुते परितोष वर्षम। तो क्या होगा महाराज उस वर्षा से? संपूरितो भवति यस्य मनस्तटाकः, तो भक्त के मन रूपी खेत भक्ति रूपी बरसात से बरसे हुए परितोष से संपूरित, मन रूपी खेत में पानी लबालब भर जाए। बारिश यदि, बादल यदि वृष्टि करे तो किसान के खेत पानी से लबालब भर जाएगा कि नहीं? हैं? इसी तरह भगवान परमात्मा के चरण रूपी भक्ति रूपी बादल वृष्टि करे तो भक्तों के परितोष रूपी संतोष रूपी वृष्टि करे तो भक्तों के मन रूपी खेत लबालब भर जाएगा। उपमा अलंकार, उससे क्या होगा महाराज? जैसे खेत पानी से लबालब भर जाए तब उस खेत में क्या होगा? तज्जन्म सस्यम अखिलम सफलम, सस्य माने धान, वनस्पति, अनाज, औषधि, समझे नहीं? बारिश होगी ना तब धरती में वनस्पति, सस्य माने घास, सस्य माने वनस्पति, सस्य माने धान, धान मक्का ज्वार आदि जो कुछ भी हो वनस्पति, पुष्णामी च औषधि सर्वासोम भूत्वा रसात्मकम्। तब मनस्तटाक परिपूर्ण लबालब भर जाए तब मनुष्य का, भक्त का तज्जन्म सस्य, जन्म रूपी धान खेती फलीभूत होगा, सफल होगा, समझे कि नहीं? अनाज लगाओ, पानी नहीं है, तो खेत में लगाया हुआ अनाज क्या फलेगा? खेत में तुम वनस्पति लगाओ, फल के वृक्ष लगाओ और उस वृक्षों को बारिश नहीं है, मल नहीं है, जल नहीं है तो सूख जाएगा, फल लगेंगे उसमें? सफल होगा कि अफल होगा वो वृक्ष? अफला हो जाएंगे वो। इसलिए प्रार्थना करते हैं ना, पृथ्वी सस्य शालिनी देशोयम क्षोभ रहिता। एक जगह प्रार्थना किया ये मंत्र का, काले वर्षतु पर्जन्या पृथ्वी सस्य शालिनी देशोयम क्षोभ रहिता ब्राह्मण संतु निर्भया। तो प्रार्थना करते समय कुछ दलित बैठे हुए थे, नाराज हो गए, ये मंत्र गलत है, ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। क्यों महाराज? बोले ब्राह्मण संतो निर्भया, ये देश में केवल ब्राह्मण लोग निर्भया रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं मंत्र से, तो गलत मंत्र है। क्या हम शूद्र लोग क्या भयभीत रहे हैं? ब्राह्मणा, ये ब्राह्मणों ने रचना की ये प्रार्थना, इसलिए अपने लिए इन्होंने कहा कि ब्राह्मणा संतु निर्भया, और हम लोगों के लिए तो प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या संसार में हमेशा डरते हुए रहे समाज में? कोई आज योग दिवस बड़ा बवाल चल रहा था, हमारे धर्म में योग करते समय पहले 3 बार ओम का उच्चारण करना पड़ेगा, हम योग ओम का उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए ये योग ये हिंदुओं का है, हमारा नहीं है, हम नहीं करेंगे। बवाल खड़ा किया ना ले जी। अब सूर्य नमस्कार हम नहीं करेंगे, अल्लाह के अलावा दूसरों को हम नमस्कार नहीं कर सकते हैं, तो सूर्य हिंदुओं के देवता हो सकते हैं, हम मुसलमान के देवता नहीं? अरे उल्लू हो, तुमको रोशनी दे रहा है कि नहीं है? बिना पैसा का रोशनी दे रहा है कि नहीं सूर्य? तो तुम ऐसे कैसे कह रहे हो कि भाई मुसलमान का देवता नहीं है? हाँ, मुसलमान होने के बाद सूर्य की रोशनी उनको न मिलता तो वो ये बात कहते, रोशनी तो मिल ही रहा है, फिर बिना मतलब का विवाद। और दूसरी बात, वो आसन वास्तव में उस आसन से सूर्य को नमस्कार किया ही नहीं है, तो उस आसन का नाम सूर्य नमस्कार आसन क्यों रखा था? क्योंकि उसमें 12 पोज हैं, इतनी हेतु था उसका। वो जो फिजिकल एक्सरसाइज का जो पोज है उसमें 12 पोज है और सूर्य 12 है, तो वो 12 संख्या के समानता के चलते उस आसन के पोज को सूर्य नमस्कार कहा, अन्यथा वो सूर्य नमस्कार नहीं है। हाँ, कोई एक्सरसाइज है, व्यायाम है। अब नाम दिया सूर्य नमस्कार आसन, बोले सूर्य को हम क्यों नमस्कार करें, तो हम नहीं करेंगे। तो सरकार ने सूर्य नमस्कार आसन के आइटमों को ही हटा दिया, कराया नहीं, आइटम ही हटा दी, और आसन करो सूर्य नमस्कार न करो। और एक महात्मा ने कह दिया, ओम उच्चारण नहीं करते तो अल्लाह अल्लाह करो। हे भगवान, क्या बवाल है भाई। सस्य तज्जन्म सस्यम अखिलम सफलम च न अन्यत व्यतिरेक, उसी का जन्म फलीभूत होगा,
सब फल होगा, तो वही पौधा आगे जाकर फलीभूत होगा।
जिस पौधे को लगाने के बाद नियमित रूप में मल और जल का सिंचन होता रहा हो, और मल और जल का सिंचन नहीं हुआगा तो वह पौधा सफल नहीं होगा, फलेगा ही नहीं। तो ये जीवन भी तभी सफल होगा जब शिव भक्ति रूपी बादल शिव चरण रूपी आकाश में गर्जने लगेंगे और संतोष रूपी वृष्टि उस भक्ति रूपी बादल से बरसने लगेंगे, तो मन रूपी खेत संतोष रूपी पानी से लबालब भर जाएगा। और मन रूपी खेत संतोष रूपी पानी से लबालब भरेगा तो उसी मन के द्वारा परिचालित होने वाला जीवन सफल हो जाएगा, अन्यथा जीवन फिर क्या होगा? निष्फल। निष्फल का अर्थ क्या हुआ? जन्म जीवन बेकार चला जाएगा, जीवन बेकार चला जाएगा।